सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो,
ओम शांति। गीत में जो हम सभी ने सुना, सदा खुश रहो, लेकिन आज भाई जी हमें तीन बातें सुनाएंगे, कैसे खुश रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है और किस प्रकार अपने आप को संपत्तिवान धनवान बनाना है, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने की क्या विधि है, हम सभी सुनेंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति। अभी आप बताएंगे ना सदा खुश कैसे रहेंगे। गीत तो सुनना कहना सहज है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, तो सुख खुश कैसे रहेंगे। और बताया था पहले, खुश रहने की दवाई दी थी, आप भी खुश रहो औरों को भी खुशी बांटो, कहते हैं बाबा बहुत दफा कहता है, खुश रहो औरों को खुश करो। कैसे करेंगे? नहीं कैसे बैठेंगे, कहां से लाओ खुशियां, खुशी तो आई नहीं है, हाई तो बांटेंगे ना, तो याद तो आप कर रहे, कैसे बांटेंगे कैसे। और विधि बताई थी, देखो सुना बहुत समझा कितना, अभी देखना पड़ेगा ना, लेकिन आत्मा के अंदर देखा, लेकिन उस आत्मा के अंदर दर्द है, दुख है, उसको सिर दर्द हो रहा है, तो उसको खुशी कैसे देंगे, दवाई देंगे तो खुश होगा ना, तो दर्द मिटाना पड़ेगा ना, तो कैसे खुशी बांटेंगे। सुनाया था दवाई भूल गए, इधर मैंने कहा था उस दिन दवाई खा के जाना, मुरली के पास जेब में रखा, लेकिन खुशी कैसे होंगी मिलेंगे उनको। हाँ देखो अभी तक पूरा समझा नहीं है, चलो मुरली लाया, आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ, कौन सुनाएगा आज, एक अच्छा पॉइंट सुनाओ, जब बाबा ने अच्छी पॉइंट सुना आपके लिए हमारे लिए, अच्छी पॉइंट, प्रेम तो हो गया और कौन बता, अच्छी से पॉइंट एक बताओ आज का, धारणा के लिए उससे सब कुछ होगा, और जो आपने अभी कहा खुश रहने के लिए वो भी होगा उसके अंदर। लेकिन राखी बांधने के लिए कहां कहां जाएंगे आप, तब मिलेगा ना। हाँ आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताया, बच्चे अपनी स्वस्मृति में मतलब अपने स्वमान में रहो, और सर्वशक्तियों को, मास्टर सर्वशक्तिवान कौन, तो शक्तियों को उपयोग करो अपने स्वमान में रहकर, तो शक्तियों का आह्वान करो तो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। तो आज की दुनिया में क्या चाहिए, बहन जी माता जी ने कहा प्यार चाहिए, कहां से प्यार आएगा, आज की दुनिया में ज्ञान बहुत है तो क्या चाहिए सबको, बीमारी है तो क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। ज्ञान दे दो नहीं कहते कभी भी आप, बाबा मुझे शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो कहते हो, ज्ञान मिल गया, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, हो गया, तो शक्ति चाहिए। तब बाबा ने कहा आज कि बच्चे स्वमान में रहकर आह्वान करो, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो सर्वशक्ति अपने आप काम करेंगी, किसी को शांति की शक्ति दे दो काम करेंगी, देंगे, और किसी को बाबा इनको सदा सुखी बनाओ होगा, जेब में कुछ भी नहीं कैसे देंगे आप। तब बाबा ने कहा अपने स्वमान, मैं कौन, मैं आत्मा, आत्मिक स्वमान में स्थित हो जाओ, ऐसे धारणा वाले पॉइंट ले लो और किसी को बताओ, देखते ही देखे उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है। सुनाया था, एक सुनाया था आपके लिए कि आप बार बार मुरली के पॉइंट सुनते पढ़ते रहो तो ये दवा है, ये संजीवनी बूटी है, ये आपके अंदर जो क्रोध का अंश है, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, विचार चलता है, क्रोध अपने आप नहीं आता है, तो वो नहीं चलना चाहिए, तो दवाई लेनी पड़ेगी ना। तो दवाई ज्ञान, मुरली के पॉइंट बार बार पढ़ते हो, कम से कम 3 दफा पढ़ते हो तो आपकी बीमारी मिटेंगी, धीरे धीरे क्रोध का अंश खत्म होता रहेगा। और औरों को देते बताते हो, कोई भी मिला उनको सुनाते हो, उसके मन में गलत कुछ विचार चल रहा था, तो आपने मिले ओम शांति के और मुरली के पॉइंट सुनाया तो उसका चेहरा खिल जाता है। क्यों? ये दवा है, ये दर्द की दवा। हर एक के मन में कोई ना कोई दर्द है, समस्या है, दुख है, तो उसको मुरली के पॉइंट सुनाते ही, उसने भी सुना है लेकिन याद नहीं है, तो सुनाने का तरीका बताया, सामने मिला ओम शांति करो सुनाओ, फोन के दर कोई मिला नहीं फोन करके सुनाओ, तो किसी न किसी प्रकार से आज के मुरली के पॉइंट, और वो भी धारणा वाला, उससे ताकत मिलनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपने स्वमान में रहो, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति चाहिए। तो ये स्मृति में रहकर अगर ऑर्डर करते हो तो वो शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। समझ में आया? ऐसे पॉइंट्स लेना, धारणा वाली, जो आपको भी काम है। बाबा अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता है, क्योंकि हमें आज शक्ति चाहिए, ज्ञान बहुत सुना, तो आपको सर्वशक्तियां चाहिए, सर्वशक्तियों को दान दे दो। मुरली सुंदेशन सुना था, न्यू पॉइंट्स ले लो। समझ में आया? तो ये खुशी बांटने के, भूलना नहीं, खुश रहो, कहा कैसे खुश रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, तो ज्ञान का चाहिए। ज्ञान आज के मुरली के पॉइंट सुना, किसी को सुनाओ वो भी कहेगा अंदर से, दिल आज इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया, आज माताजी ने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया, आपने भी मुरली सुनी थी, इन्होंने सुनाया, तो अंदर चलता है बहुत अच्छा। ये दुआ है, दुआ अपने अपने होती है। अगर आपने किसी को कुछ सुनाया, वो जा सुन के चली गई, जाते जाते देखो माताजी को अच्छे मुरली के पॉइंट याद है, मैंने भी सुना था मुरली, मुझे याद ही नहीं, बहुत अच्छी है माताजी, ये मन में जो आया दिल में, ये दुआ है। इससे बाबा ने कहा खुश रहो और एक खुशी बांटो। समझ में आया? ये करना, और ये एक के साथ मल्टीपर्पज है, एक के अंदर अगर आपको याद है तो ये दवा है। क्रोध अपने आप नहीं जाता, बदले की भावना आती है, मन में बार बार चलता है, तो ये कैसे जाएगा? जाओ, कहते सबको अच्छा शुभ सोचो, कोई भी गलत सोचना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है, लेकिन उसको हटाने का तरीका चाहिए अभी, नहीं तो आज की दुनिया में के बीमारी की वर्णन बहुत है लेकिन बीमारी मिटाने का तरीका नहीं बताता कोई, ये बीमारी है वो बीमारी, हाँ बीमारी है पता है सबको है, लेकिन वो मिटाए कैसे, दवाई कौन सी ले लो वो बताओ ना। गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, ये कहना मेरे लिए अज्ञान है। मैं अगर आपको कहता गुस्सा नहीं करो, ये मैं अज्ञान में हूं अभी। क्यों? कलयुग माना ये 5 विकार अति में है, समझ है। तभी परसों पूछा था, एक भी व्यक्ति आत्मा क्रोध मुक्त नहीं बाबा के बच्चे बनने के बाद भी, तो पता है सभी बीमार है, तभी तो हॉस्पिटल में आए हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर पूछेगा बीमार कहो, तो बीमार आ गए ना, नहीं तो नहीं आता था। तब दवा चाहिए, दवाई ले लो, तो आपको सब दवाई चाहिए। तो बहन जी ने पहले का भी 3 दवाई दे दो, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा के बच्चे हो पक्का, और किसी के तो नहीं? नहीं, हाय थोड़ा सा बच्चे याद आते हैं, पति याद आता है, माँ और परिवार वाले याद आते हैं, नहीं आते हैं? नहीं है, चलो माता जी कहते नहीं। अगर बाबा के बच्चे हो तो बाबा ने कहा बाप आता है बच्चों को वर्षा देने के लिए, तो वर्षा क्या है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। 21 जन्मों के लिए बाबा ने गारंटी किया। आज भी बाबा ने मुरली में गारंटी किया था, याद है? आज क्या गारंटी किया बाबा ने? गारंटी दी आज, सबसे पहले पॉइंट, हाँ बाबा ने कहा कि ऐसे देखो, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ना। ऐसे पॉइंट लो, बाप के भगवान के मददगार बनो। बाप के जो मददगार बनते हैं तो बाप गारंटी करता है। क्या गारंटी करता है? क्या गारंटी करता है? हाँ देखो, गलत हो गए ना। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, बाप बच्चों की गारंटी करता है। क्या गारंटी करता है? कि बच्चे कभी भी काल नहीं आएगा, काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा। क्यों? बाप रक्षक है। बाप की मदद किया, बाप आपकी मदद करेगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखो कि बाबा को फिर चलो विचार चलना चाहिए, मैं बाबा को कैसे मदद करो, किस प्रकार से करो। सिर्फ इतना पॉइंट नहीं, बाप की मददगार बनना चाहिए तो उसके पर सोचो, चबा चबा के खाओ तब रस निकलता है कि मैं बाबा को कैसे मदद करूं। अब बाबा ने कहा बच्चे कि बाप आपको वर्षा देने आया, तो आपको अपने आप 21 जन्मों के लिए बीमारी निरोगी काया मिलेगा, तो बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा, तो कैसे निरोगी काया होंगी, कैसी होंगी वो, बताओ कौन बताएगा। बाबा ने कहा बच्चे आपको कम से कम 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है ना, तो आपको निरोगी काया, शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो शिव बाबा परमधाम से दवाई भेजेगा, कैसे करेगा बताओ। धन हेल्दी वेल्दी कहा, ऊपर से सोना चांदी भेजेगा, तो वेल्दी कैसे बनेंगे, अपने आप बनेंगे। तो हेल्दी बनने का पहले पुरुषार्थ बताओ। तो पुरुषार्थ नंबर वन, तीनों की बाबा ने बहुत दफा विधि बताया, हम वो भूल जाते, योग करो, बाबा को याद करो, सब हो जाएगा। नहीं, खेती में गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा, चावल नहीं उगेगा। जो बोएंगे वो उगेगा। ऐसे भोला बनात करके भावना में नहीं रहना। सबके पास पूछ लो, पूछेंगे बाबा को याद करो, हर चीज के लिए बाबा को याद नहीं, अलग अलग विधि। आपको निरोगी काया चाहिए, इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भाग्य विधाता हूं, बच्चों के भाग्य बनाने की विधि बताता हूं, करना आपको है, जो करेगा वो पाएगा। तो क्या करना, बाबा मुझे इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो क्या करूं मैं? तो बच्चे इस सृष्टि पर शिव बाबा ने आके रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की आप सेवा करो। कितनी सेवा करो? तो विधि बताया कि एक मिनट अगर इस यज्ञ की सेवा करते हो, एक जन्म के लिए, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए निरोगी काया मिलेंगी, मैं कुछ नहीं देता हूं। विधि है, खेती में एक गेहूं का बीज बोलो, 50 सौ दाना लगते हैं। भगवान ने लगाया नहीं, विधि बताया, खेती में बीज आपने बोना है तब एक का 50 दाना लगेगा, ये विधि बताया। गेहूं का बीज आपने बोना है तब लगेगा, ऐसे नहीं बाबा देगा, है ना, ऐसे नहीं, हर चीज की विधि चाहिए। तब उसको कहा कि हे भाग्य विधाता, विधि बताओ, मैं कैसे इस बीमारी से ठीक हो जाऊं, मैं कैसे क्या करूं। तो बाबा टचिंग देता, विधि बताता है। तो एक विधि, निरोगी काया बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, तो ये यज्ञ। तब शास्त्रों में गायन है, दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया। यज्ञ में हड्डी डालेंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा ना, हड्डी यज्ञ में डालेंगे भ्रष्ट हो जाएगा, आहुति हो गया। अर्थात ये तन आपका नहीं, एक सेकंड भी आप शरीर में नहीं रह सकते हो। ऑर्डर आया, कितना सोना पहनो, कितना खाना खिलाओ, आपका नहीं। तो ये भगवान के कार्य में लगाओ। किसकी सेवा में लगाते हो ये शरीर? 24 घंटा किसकी सेवा में लगा रहे? तो वो मदद करेगा ना। आप अगर भगवान की सेवा में लगाते हो, कान खोल के सुनना, कभी कभी तो हम सेवा कर रहे, योग कर रहे, इतना ही नहीं, ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो? इनके फैक्ट्री में काम करते हो तो वो पगार देगा ना। तब कहा मीरा पवित्र रही तो भी सत्युग में नहीं आ सकती है। किसने पवित्र रहने के लिए कहा आपको? किसके श्रीमत पर रही? हाँ, श्रीमत पर नहीं, भगवान शिव बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करता है, उसके मत पर चलेंगे तो वहां श्रीमत के अनुसार, तो श्रीमत के क्या है, इस यज्ञ की आप एक मिनट, एक का पदम गुना है, एक मिनट इस यज्ञ की शरीर से द्वारा इस यज्ञ की सेवा करो, तब ये यज्ञ आपको ऐसा वरदान देगा, निरोगी काया वरदान मिलेगा। कम से कम गारंटी बताता, 100 साल भी ये फैन चलेगा, कंपनी गारंटी देता है 25 साल तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन 100 साल भी चलेगा, ऐसे नहीं 25 साल के खराब हो जाएगा, सारे कलप के लिए निरोगी काया मिल सकती है। विधान शुभावा दे दो, शुभावा दे दो मांगने से नहीं मिलेगा, विधि बताता है। बच्चे इस रुद्र यज्ञ की सेवा करो। अभी आप पूछो कितनी सेवा करते हो, 24 घंटे में किसके लिए सेवा कर रहे हो, इस शरीर के लिए कर रहे हो, माताजी खाना बनाते 2-3 बच्चों के लिए परिवार में किसके लिए लगाया, और भगवान को कहते निरोगी काया दर्द ठीक करो, भगवान ठीक करे, आप किसकी सेवा में लगा रहे हो, है ना। तो पूछ लो, ऐसे नहीं रहना कि इतना ज्ञान में जो लोग बहुत कहते हैं हम इतनी सेवा, इतना से हम योग करते हैं, हम इतना, मैंने 10 लाख रुपया दिया बाबा को तो ये बीमारी क्यों हुई। हाँ याद रखना, तन कितना समय बाबा की सेवा में लगाया, यज्ञ की सेवा में लगाया, बाबा की नहीं यज्ञ की सेवा में, यज्ञ किसका, हाँ भगवान ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ की सेवा करो। समझ में आया। अभी आप अपने आप से पूछना इस यज्ञ की कितनी सेवा करते हो, तब अधिकार से कह सकते हो बाबा मैंने आपके फैक्ट्री में काम किया मुझे पगार दे दो, बिना काम के पगार मांग सकते हो, बाबा मैंने आपकी यज्ञ की इतनी सेवा किया, तो आपने कहा था, बाबा को भी याद दिला सकते हैं ना, अधिकार से कह सकते हो कल बाबा आपने कहा था कि यज्ञ की सेवा करो, देखो हम इतनी सेवा करते हैं और आप हमारी बीमारी ठीक नहीं करते ऐसे बोलते हो, तो बाबा को बोलने का भी अधिकार चाहिए ना। तो यज्ञ की सेवा कितनी करते हो पूछ लो, कहीं भी सेंटर में करो, सेंटर में चद्दर बिछाए घड़ी करके रख दो, पानी डाल दो गार्डन के, किसके गार्डन है, शुभ बाबा का गार्डन है, बाबा की यज्ञ की सेवा है। यज्ञ मीन सिर्फ मधुबन नहीं, किसी गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, सब ये सारी सृष्टि पर ये रुद्र अश्वमेघ रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। समझ में आया। अभी आप पूछते अपने आप से कि कितने समय हम यज्ञ की सेवा में दे रहे हैं, सारे कलप के लिए इस शरीर को खिलाने के लिए 24 घंटे देते हो, भगवान के लिए कितनी मदद किया, तब बाबा ने आज गारंटी दिया कि बच्चे इस शरीर को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, धन कहां लगाया। अभी भाई जी पूछ रहा है कि भाई जी मैं तो नौकरी में हमको इतना बिजी है, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है कभी भी, तो मेरे मैं सेवा तो नहीं कर सकता हूं। अभी माता जी कहते भाई जी मैं इतनी बुजुर्ग हो गई हूं, मुझे मेरी सेवा दूसरों ने करनी चाहिए, मैं तो नहीं कर सकती हूं कुछ भी, तो मैं मेरे पास पैसे है, बाबा को 10 करोड़ रुपीस देती हूं, क्या बाबा मुझे निरोगी काया देगा। क्यों, माता जी तो कुछ कर ही नहीं सकती है, इतनी बुजुर्ग हो गई है, तो भी बाबा को कहते बाबा ये पैसा ले लो और मुझे निरोगी काया दे दो, देगा नहीं देगा, बताओ, हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। क्यों, हाँ ये भी याद रखना, हाँ ये याद रख, गेहूं का बीज बोया भगवान, आप सब कुछ कर सकते हो, चावल उगाओ, मेरे पास गेहूं नहीं है, मुझे गेहूं चाहिए, रोटी खानी है, और मेरे पास चावल का दाना, मैं चावल का दाना बोती हूं, आप गेहूं उगाओ, आप सब कुछ कर सकते हो, सर्वशक्तिमान हो। हाँ ये दुविधा में नहीं रखना रहना, बच्चे जो दिया मैं कुछ नहीं देता हूं, मैं सिर्फ विधि बताता हूं, जो बोया व्हाट यू सॉ सो शैल यू रिप, जो बोया वो उगेगा, विधान है, विधाता है, विधि बताता है। फिर आप कहेंगे बाबा धन कहां लगाते हो, तो एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। देखो भाई जी को लगा, मुरली में बाबा सुनाता है कि बच्चे तन सेवा में लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, मुरली सुनी आपने, मुरली सुनते सुनते माता जी के विचार में आया, अरे आज तो घर में सेवा करना है, मेहमान भी आने वाले है, तो तन से सेवा नहीं कर सकता है। मुरली सुनते सुनते बाबा से बात करते, बाबा आज तन से सेवा नहीं कर सकते हो, तो बाबा की फिर मन भी वहां लगाना पड़ेगा, नहीं तो नमक के अंदर और कुछ गिर जाएगा, दाल में, मन भी तो खाना बनाना है, सेवा करना है, वहां लगाना पड़ेगा। तो देखा बाबा धन से सेवा कर सकते हो, देखा पर्स में 100 रुपया है, बाबा धन की सेवा कर सकते हैं, तन से नहीं मन से नहीं। तो क्या करो, देखा तो सेंटर में खुर्ची नहीं है, तो गई सीधा मार्केट में, 100 रुपया में एक खुर्ची आ गई, ला के सेंटर में रख दिया, तो चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्यों? तन नहीं लगाया, मन लगा, धन तो मिलेगा ना, तीनों नहीं लगाया, लेकिन एक तो लगाया, चलेगा ना? नहीं लगाया कहती है वैद्य, कहते चलेगा भाई जी, बताओ नहीं लेगा, चलेगा? आ? किसको पूछना चाहिए, बाबा की मुरली श्रीमत बाबा का है, निमित का, बाबा का श्रीमत नहीं है मुरली, तो श्रीमत में सुनाया मुरली, सवेरे सुनते सुनते बाद में नहीं, हाँ चलेगा भाई, कहते चलेगा, माता जी बताओ नहीं चलेगा? माताओं को मुरली बाबा अलग सुनाता है, बहनों भाइयों को अलग सुनाता है, ऐसे कहेंगे ना? हाँ बताओ भाई, बताओ। हाँ भाई जी ने सही बताया कि सही बताया, तो श्रीमत बाबा का है। हाँ बाहर जाके किसी की सेवा करो, लेकिन यहां अगर कुछ करना चाहते हो, यहां की व्यवस्था देखने वाले जिम्मेवार व्यक्ति कोई है, यहां कुछ करना चाहते हो, सेंटर में कुछ करना चाहते हो, वहां जिम्मेवार व्यक्ति को, निमित टीचर को, बहन जी आज बाबा ने कहा सेवा करो, लेकिन मैं तन से तो नहीं कर सकती हूं, मन से भी नहीं कर सकती हूं, मुझे विचार है धन से कर सकती हूं, थोड़ा सा पैसा है, बहन जी इधर सेंटर में देखा खुर्ची नहीं है, एक खुर्ची लेके आओ, अरे बहुत खुर्चियां है, रखने के लिए जगह नहीं, इतने नहीं रखा, आप भंडारे में डालो और कुछ सेवा में लगेगा, तब एक का पदम गुना जमा होगा। क्यों? बाबा बहुत दफा कहता है मुरली में, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, तो श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है, ये है श्रीमत बाबा का है, सुना आपने। फिर मन में विचार आया कि 100 रुपया खुर्ची लेके आते सेंटर से, बाहर से नहीं, वहां भी श्रीमत का पूरा उपयोग चाहिए, तो वहां निमित्त टीचर, हाँ बाहर जाके कुछ करो, लेकिन यहां कुछ कर सकते हो, यहां की व्यवस्था बनी हुई है। आप कहेंगे भाई, कहेंगे सोफा ठीक नहीं, मैं इधर लाके बैठता हूं, तो चलेगा? हाँ यहां की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है। तो सेंटर में कुछ करते हो तो निमित्त टीचर को पूछ के अगर सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा, नहीं तो एक का एक ही गुना होगा। कभी कभी श्री मुरली सुन करके आप कहेंगे हमको सेवा करने के लिए बाबा ने कहा, बच्चों दिन रात सेवा करो, तो आप सेवा करेंगे तो मिलेगा भाग्य। हाँ सेवा भी श्रीमत के अनुसार, श्रीमत कहा अगर सेंटर में कुछ करते हो तो बहन जी को निमित्त आत्मा को पूछ के अगर करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा। उदाहरण के लिए देख लो, सिर दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर में जाओ, सिर दर्द की दवाई दे दो, दे देगा, ये ले लो सिर दर्द की दवाई, आप ले लो सिर दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको सिर दर्द किसके कारण हो रहा है, चश्मे का नंबर चेंज हो गया है, आपको लगा सिर दर्द है, आप जाके सिर दर्द की दवाई मिलती है लेके आया, और गोली लेंगे और रिएक्शन होगा, सिर दर्द तो चश्मे के नंबर के कारण, इसलिए गोली पर लिखा रहता है कि डॉक्टर को पूछ के दवाई लेना। आपके सिर दर्द की गोली है, लिखा है उसके अंदर भी, लेकिन आपको सिर दर्द किसके कारण हो रहा है, वो उसके दवाई पर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को पूछना, डॉक्टर साहब मुझे सिर दर्द दिया, मैं गोली लेके आया हूं, तो वो कहेगा ठहरो गोली सिर दर्द की है, लेकिन आपको सिर दर्द क्यों हो रहा मैं पहले देखता हूं, अरे आपको सिर दर्द इसके कारण है, चश्मे का नंबर चेंज कर दो, दवाई नहीं चाहिए। समझ में आया, सिर दर्द क्यों हो रहा है, चश्मे का नंबर चेंज है, तो इसलिए कारण को जाने के लिए। आपको कहा खेती में बीज बो लो तो 100 दाना उगेगा, ऐसे बीज बो डाल के आ जाओ चिड़िया खा के जाएंगी, बीज बोने की विधि है, कैसे बीज बोना चाहिए, हाँ ये विधि कि निमित्त आत्मा को पूछ करके अगर आप सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा। ऐसा नहीं हमको सेवा करो कहा, हम अपने आप करते हैं, तो जमा नहीं होगा। समझ में आया, कुछ प्रश्न है तो पूछना, समझ में नहीं आए तो पूछना, अंदर ऐसे हाँ हाँ करते नहीं रहना, सत्वचन महाराज जी नहीं तो हमारी एक आदत हो गई, जो कहा सत्वचन और यहां ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं ये साथ में नहीं, ये जरूरी है। अगर कि तन मन धन कहां लगाना है, ये जरूरी है। तब आप कभी कभी, हम 25 साल ज्ञान में चलते हूं, इतने में बाबा की सेवा किया, इतना योग लगाती हूं, कभी मैंने मुरली मिस नहीं किया, कभी अमृतवेला मिस नहीं किया, ये बीमारी क्यों आई? तन कभी सेवा में नहीं लगाया। समझ में आया? योग लगाया, श्रीमत पर चले, लेकिन तन भगवान की यज्ञ की सेवा में नहीं लगाया। वो पता नहीं चला, हमने जो किया वो हमें पता है, तो क्या क्या चाहिए वो जानना चाहिए। ठीक है, मंजूर? तन कहां लगाया, धन कहां लगाया, अब सबके बाबा ने विधि बताया। एक का पदम गुना मिलता है संगम पर। आज भी बाबा ने संगम की महिमा बताई, चार प्रकार के, कौन बताएगा? चार चीज बताए, एक बताए, एक पुरुषोत्तम और, हाँ सुना, हाँ ये याद रखो, पुरुषोत्तम संगम युग। पहले पुरुषोत्तम वर्ष है, फिर मास है, फिर घड़ी है, हाँ ये अब संगम, ये याद रहना चाहिए कि इस समय जो हम करेंगे 5000 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। एक बार बरसात के समय पर खेती में बीज बोया तो एक साल के लिए अनाज हो गया। अगर शादी थी तो जब हम बीज बोया ही नहीं, जा ही नहीं सके, बीमार थे, बीज बोया ही नहीं, बरसात खेती में बीज बोने का समय होता है, चला गया तो अनाज मिलेगा तो कहां से लाएंगे, तो इनके पास जाना पड़ेगा। तो मंदिर में जाना क्यों पड़ता है? मांगने के लिए जाना पड़ता है। क्यों समय पर खेती नहीं बोया, मांगना क्यों पड़ रहा है? मंदिर में क्यों जाना पड़ता है? मंदिर क्यों बनाया? मांगना पड़ता। क्यों? समय पर खेती नहीं बोया था। अगर खेती बोते थे 5000 साल के लिए गारंटी है ना। अगर बरसात से पहले खेती में बीज बोया तो एक साल के लिए अनाज बना के रख दिया, कोई चिंता, मांगने की जरूरत नहीं, अनाज बनाया। अगर किसी भी कारण, किसको बताएंगे, हमारे घर में शादी थी, मैं बीमार था, तकदीर को बताना है, किसी को नहीं बताना, कोई नहीं सुनने वाला, विधाता आकर के विधि बता के चला जाता है, और जो करेंगे वो पाएगा। ये ज्ञान सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सोचना, क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान है, रूहानी ज्ञान है, इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं। ऐसे करो, बाबा को याद करो, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो तन कहां लगा रहे हो, धन कहां लगा रहे हो, समझ में आया? मन कहां लगा रहे हो, उसकी विधि पहले बताया। मन से पहले अपने मन की भी चार प्रकार की सेवा है। पहले मन से अपने मन को, अगर सेवा करने से पहले हाथ से सेवा करना चाहते हो तो आपका हाथ ठीक है तो सेवा कैसे करेंगे? पहले अपना हाथ देखो, सेवा करने योग्य है? हमारा मन सेवा करने योग्य है? वो पहले मन की सेवा करो। कैसे करो? कहा मुरली 3 दफा कम से कम पढ़ाओ उसको, तो मन स्वच्छ हो, स्वच्छ मन सेवा में लगाएंगे ना। तो दूसरा कहा, चलते फिरते किसी को देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, है ना। मन अगर स्वच्छ है, मना आत्म अभिमानी है, तो अभी पहले सुनाया, तो शक्ति भी आपका काम करेंगी, ऑर्डर मानेंगी। अपवित्र व्यक्ति अगर ऑर्डर करे मानेगा कोई नहीं, तो पवित्र चाहिए। तो मन की पहली सेवा करो, फिर दूसरी मन के द्वारा सेवा करो। एक दुआई दे दो कहा, दूसरा कोई माताजी मिल गई, माताजी ओम शांति। फिर देखो आज बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाए थे, स्वच्छ मन है, दिल है तो याद रहेगा, नहीं तो याद ही नहीं। मुरली तो सुनी थी, याद ही नहीं है तो क्या फायदा? सामने वाला व्यक्ति को खाली हाथ भेजा, दान दिया ही नहीं है ना। तो सामने वाला व्यक्ति मिला उसको दान दे दो। कितने लोगों को देते हो? तो एक का, कितने, एक व्यक्ति को अगर एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो, बाबा ने कहा एक का पदम गुना, ये धन है, अविनाशी धन है ये। धन जमा करो, ज्ञान के संस्कार बनाओ, अपने अविनाशी संस्कार बनाओ। तो जितने लोगों को आज आप मुरली के पॉइंट सुनाते हो उतना ज्ञान जमा होता है। एक दिन प्रयोग करके देखना, तभी कहा था यहां करके अपने अनुभव सुनाना चाहता कि आज अगर मुरली के पॉइंट इनको सुना, दो चार लोगों को सुनाओ आप, और आप शाम तक भूल गए बाय चांस, याद ही नहीं कुछ भी। शाम को अगर आप स्नान करते हो, कभी योग में बैठे, तुरंत याद आएगा, अरे मैंने इनको कहा था, इनको भी कहा, चार लोगों को आज मुरली के पॉइंट सुनाया, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने इसका उपयोग किया ही नहीं। आपको खाएगा। तब बाबा ने इसी अर्थ से कि सेवा करो कहा था कि बच्चों औरों को ज्ञान सुना तो आपको रियलाइज होगा। आपके अंदर धारणा होनी चाहिए, अपने आप ज्ञान मुरली पढ़ने से, 100 दफा मुरली पढ़ो, धारणा नहीं होती है, याद नहीं रहती है। 100 दफा बैठ के सुनो, नहीं धारणा तब होंगी जब आप सुनाएंगे, कर्म करेंगे। औरों को मुरली सुनाओ तो आपको खाता है अंदर, इनको देखते ही, देखो इनको मैंने कहा था गुस्सा नहीं करो, देखो मैंने आज गुस्सा किया, इनका चेहरा देखते आपको रियलाइज होता है, ये दर्पण है। तो सेवा आपको सुख भी देता है और दुख भी देता है। अगर विधि पूर्वक नहीं किया, आपने सुनाया आपने नहीं किया, आपको महसूस होगा, समझ में आया, आज का आज ही होगा। तब रोज अगर मन को स्वच्छ करना चाहते हो, निरोगी रखना चाहिए मन को भी, मन की सेवा करना चाहिए, तब आपका मन भी, देखो दो चार लोगों को आप ज्ञान सुनाओ, खुश रहता, देखना आज मैंने कुछ सेवा किया है ना। तब बाबा कहता बिना सेवा किए खाना भी नहीं खाओ, क्योंकि ये खाना है, औरों को खिलाए तो आप क्यों खा रहे हो, शरीर को क्यों खिलाते हो। तो सेवा करो, कैसे करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ने फोन किया आज मुरली के पॉइंट सुनाओ, सुनाना चाहते हो लेकिन आज मुरली के पॉइंट जेब में रखा ही नहीं, तो को हर्जन है, किसी कारण सेंटर में नहीं गए, फोन करके मोबाइल से इधर उधर से नहीं, सेंटर में फोन करो और सेंटर से फोन करके मुरली के पॉइंट ले लो। किसी कारण बाहर गए, बीमार हो गए, कुछ तो कुछ होता है, समझ में आया, तो वो सोर्स करना चाहिए। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तन कहां लगाना चाहिए, मन कहां लगा रहे हो, 24 घंटे है ना, मन में ज्ञान का चिंतन, योग कितना घंटा कर रहे हो, ये भी याद रखना चाहिए। याद, योग और तपस्या, बाबा ने योग ये नहीं कहा, तपस्या नहीं कहा, याद 8 घंटा करो, याद चलते फिरते, तपस्या बैठ करके सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। तपस्या करने की विधि बताई थी, किया था याद है माता जी, बताओ 5 पॉइंट कौन सा नंबर लगाएंगे शिव बाबा को याद करने के लिए, बताओ कौन सा नंबर है वो, ABC का, बाबा से योग बन लो, बाबा को फोन करना है तो कौन सा नंबर लगाएंगे, हाँ तो एक नंबर इधर लगाया एक नंबर इधर लगाया तो कहाँ पहुंचेगा, नंबर परमधाम में ठीक जाना चाहिए, बताओ वो क्या हो गया, बहुत कुछ खाना खाया ना, सब खिचड़ी हो गया इसलिए कहते हैं टू मैनी कुक, बहुत सारे एक बर्तन में बहुत सारे खाना बनाओ तो बर्तन खराब हो जाता है, इसलिए आपने बहुत खाना खाया अभी सब मिक्स हो गया, हाँ लेकिन भूलना नहीं, एक आगे वाला एक पीछे वाला नंबर हो गया ना, तो योग में बैठेंगे अब आपका मन बुद्धि परमधाम कैसे जाएगा, आवाज ऊपर जाएगा नहीं, हाँ फिर ठीक ठीक तो दिया, और आगे और एक, देखो माता जी थोड़ी तो पहुंच गए, देखो भूल गए, हाँ कहीं जरूरी चीज है ना, जो चीजें करनी चाहिए उनको नोट करके रखना। अभी नोट करना मीन्स क्या है कि जो चीज मिली अभी का आज ही उपयोग करो, ये क्लास सुना इसके बाद तुरंत अभी उपयोग करो, नेक्स्ट क्लास में और कुछ मिलेगा तो उसके लिए खाली तैयार रखना चाहिए। तो ये आज सुना हुआ कल करेंगे तो चला जाए, काल खा के चला जाता है, अभी का अभी, और उस सभी का सार लेना चाहिए, सारे पॉइंट नहीं, अभी आपको सार रूप में लेना कि एक है हमारे जाने के बाद तन कितना घंटा बाबा की सेवा में लगाना चाहिए, मन कितना घंटा लगाना चाहिए, एक पॉइंट, एक मुरली के पॉइंट, और बैठ करके कितना योग करना चाहिए, कब समय निकालना, 24 घंटे है, सवेरे 8-9 बजे जाते हो, माता जी कहते सारा दिन में खाना बनाते बिजी, लेकिन सवेरे 4 बजे कोई नहीं, 4 से 5 नहीं है, दिन में 12 से 1 बजे कोई नहीं, सब लोग गए, हाँ शाम को खाली है, सारा दिन में कब खाली है, तो आधा घंटा इस समय खाली है, इस समय कोई आवाज नहीं, खाना बनाना नहीं, कुछ नहीं, उस समय योग में बैठो, समय निकालो, सबका एक जैसा नहीं हो सकता, अपने सेवा कर्म के अनुसार समय निकालो। तो प्रबंध ऐसे नियम प्लान करना पड़ता है, हमको क्या करना चाहिए, कब कर सकते हैं हम, ऐसे प्लान करो तो तब हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा, अपने आप नहीं मिलेगा। सिर्फ एक योग करने से, सिर्फ मुरली सुनने से नहीं, तीनों चीज चाहिए। समझ में आया? हाँ। फिर कहा मन के द्वारा मन को भी स्वच्छ करना, तब खुश रहेगा, हैप्पीनेस अपने आप नहीं आता है। मुरली अगर आपके अंदर, आपको याद है किसी को दान करते हो, किसी को देखते शुभ भावना आती है, दुआएं देते हो, सवेरे शाम बैठ के योग करते हो, तो मन कभी खाता नहीं है, मैंने कुछ किया, जमा किया आज, है ना, तो खुश रहता है। अगर कमाई करने वाले ने आज कमाई किया तो खुश रहेगा ना, अगर कमाई नहीं किया तो खुशी होंगी, कितना भी आप उसको कहो खुश रहो, अरे आज मैंने सारा दिन में कुछ कमाई नहीं किया, कुछ पैसे मिले नहीं, क्या खाऊंगा मैं, तो वो खुश रह सकता है, बिना कमाई किया हो रह सकता है, वो कहने के लिए है। रियलिटी ये है कि कमाई करते हो तो खुश होगा, दिखाने वाली खुशी नहीं, रियल खुशी। तो ये कमाई करने में कोई तकलीफ है? तकलीफ है? मुरली के पॉइंट किसी को सुनाने में तकलीफ है? आज माताजी ने सुनाया किसी को? नहीं सुनाया, सुनाया था आज, दान किया कितने लोगों को, कितने जन्म के लिए किया, एक जन्म के, दो जन्म, बस थोड़ा सा 20 जन्म के लिए, बाद में नहीं चाहिए, द्वापर युग के बाद फिर मांगना पड़ेगा ना, खाया कमाया खत्म हो गया, कमाई जमा करना पड़ेगा ना। और ठीक है, योग में बैठा, अभी शांति स्तंभ में जाके योग करेंगे, क्या करेंगे, देखो दादी प्रकाशमणि को भी बाबा ने कहा था, दादी जी को भी, बच्चे की सेवा करते हो सेवा का ताज मिलेगा, लेकिन विकर्म विनाश करने के लिए नींद को भी त्याग कर तपस्या करो, वो अलग है, विकर्म विनाश करने की दवा अलग है, सेवा से भाग्य अलग है। तो नींद करने, इसलिए बाप को कहा था कल परसों, उस दिन भी कहा था कि क्या करना चाहिए, तपस्या कैसे करना चाहिए, तो बैठ करके आराम से बैठो, 15-20 मिनट बैठो, जबरदस्ती नहीं। तो हमारा तपस्या तो बाबा तो ऊपर है ना, बाहर सूर्य आया हुआ है, आपको धूप लगता है नहीं, आप अंदर बैठे हो तो पसीना कैसे आएगा, तो धूप में जाके बैठना पड़ता है, मकान से बाहर जाना पड़ता है। तो यहां भी आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा को जागृत करो, जागृत करके फिर बाबा को याद करते हो, शिव बाबा की किरणें आत्मा के ऊपर पड़ती है, आत्मा के अंदर आत्मा का पसीना निकलना है, पाप आत्मा है, पाप शरीर नहीं, पुण्य आत्मा है। तब बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, विधेयी बनो, अशरीरी बने, 5 नाम है, अशरीरी बनो, कैसे बनेंगे, विधेयी बनो, बैठे योग में बैठे शरीर और शरीरधारियों की विचार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आएगा नहीं, भाई जी आता है तो क्या करे, आता ही नहीं, क्यों आता है, मन बुद्धि खाली थी तब आता है, और मन बुद्धि दोनों बिजी रहेगा कहां से आएगा, है ना, विधि बताया, नहीं करो ऐसा नहीं कहता हूं, करने की विधि बताता हूं, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी एक चीज बताओ कि अभी आप संसार में जाएंगे, है ना, संसार के अंदर और बाबा का संसार है, दोनों है, लौकिक और अलौकिक में बैलेंस चाहिए, कैसे रखेंगे, हाँ, उसके बाबा बहुत दफा विधि बताता है कि बहुत लोग कहते हैं हम क्या करें, अभी माताजी कमाई करती है, नौकरी करती है, कुछ कमाई करती है, माताजी को रोज 100 रुपया मिलता है, तो माताजी कहती है मैं क्या करूं, पूरा बाबा को दे दूं, नहीं, तो विधि बाबा ने बताया 100 रुपया कमाते हो तो उसमें से 25 रुपया अपने घर में, अपने घर की सेवा में यूज करो, 25 रुपया अपने लिए यूज करो, गाड़ी में आना जाना कुछ काम करना पड़ता अपने लिए भी यूज करो, 25 रुपया घर में आपके माँ बाप है, परिवार वाले और कोई है उनकी सेवा में लगाओ, और 25 रुपया ईश्वरीय सेवा में लगाओ, 1/4 हिस्सा करो, समझ में आया, 1 अपने घर के लिए करो, फिर 1 अपने माँ बाप है कोई है उनकी भी ऋण है, माँ बाप ने भी संभाल करनी चाहिए, उनकी भी सेवा करो। अगर माँ बाप ने शादी करके दी माता जी को, ये 25 रुपया बैंक में रख दो, आए वे लेकिन कल बीमार हो गया, लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है, कहां से लाएंगे, मांगना पड़ता है, जमा कर दो 25 रुपया अपने परिवार इसके लिए याद करो, किसके लिए, बाबा की सेवा में लगाओ, 25 रुपया अपने खर्चे के लिए भी रखो। ऐसे नहीं आप कुछ नहीं करो, आप भी आराम से रॉयल रहो, परिवार को भी अच्छी तरह से रखो, जमा भी रखो और बाबा की सेवा भी करो। समझ में आया? एक ही नहीं, बहुत जमा करो, कोई फायदा नहीं, लेके तो नहीं जाएंगे कल, जमा भी रखना है, 25 रुपया जरूर रखो। धन को कमाते हो उसका भी उपयोग कैसे करना चाहिए वो भी ज्ञान चाहिए। फिर आया परिवार में, संसार में गृहस्थ में रहते हो, गृहस्थ में थे, किसी माताजी की बच्ची परिवार में शादी है तो क्या करेंगे, सभी ब्राह्मणों को बुला रहे, आप आ जाओ हमारे घर में शादी है, ये इनको सबको बुलाएंगे, बुलाना तो पड़ेगा ना क्योंकि परिवार है, क्या करेंगे, नहीं बुलाना चाहिए तो शादी पर नहीं बुलाएंगे, माता जी बताओ, लौकिक वाला अलौकिक वालों को नहीं बुलाएंगे, तो आपका परिवार तो ये है, नहीं बुलाएंगे, फिर वो कहेंगे आप माता जी आपने हमको बुलाया नहीं, क्या करना चाहिए बताओ, नहीं बुलाना चाहिए, भाई बताओ, नहीं बुलाना चाहिए, क्यों, क्यों नहीं बुलाना चाहिए, घर में त्योहार है तो बुलाना पड़ेगा ना, हाँ इसकी भी स्पष्टीकरण होना चाहिए ना, क्यों नहीं बुलाना चाहिए, घर में त्योहार है तो बुलाएंगे ना, हाँ माता जी अगर अपने हाथ से खाना बना के, ब्राह्मण है बाबा के बच्चे है, उनको आप अपने हाथ से बना के तो नहीं खिलाएंगे, बनाने वाला कौन, तो ऐसे जगह पर अगर आप अपने हाथ से कुछ करते हो तो सफाई से करते हो तो ठीक है, बिना किसी को बुलाया, इनका जीवन बहुत वैल्यूएबल है, आपने किसी को बुलाया उनके द्वारा खाना बनाते हो, आप तो नहीं बनाते हो, फिर वो खाना इनको ब्राह्मणों को खिलाएंगे, इसके लिए तो ध्यान देना चाहिए, इसको बुलाया आप आओ आप आओ, हाँ बुलाओ, जहां लौकिक में रहते हुए संसार में रहते लौकिक का कार्य करना चाहिए तो लौकिक वालों को बुला के करो, लेकिन अलौकिक वालों को उसमें फंसाओ नहीं, क्योंकि उनकी मर्यादा अलग है, उनको अपने जीवन में रखो। हाँ कभी बुला करके अगर आप अपने हाथ से बना के खिला सकते हो, कुछ कर सकते हो, नहीं तो सेंटर में करो, है ना, तो ऐसे विधि करो, आपकी इच्छा होती है कि इन बच्चों इनको भी बाबा के बच्चों को करना चाहिए तो उसकी विधि टीचर से पूछो, बहन जी क्या करना चाहिए, पूछ के करना, ठीक है, क्योंकि किसी किसी का नियम होता है, नहीं जाएंगे तो माता जी नाराज होंगी, हाँ ये भी होता है, उसने कहा नहीं मर्यादा है, जानना चाहिए विधि विधान कैसे है, ठीक है। और बताओ, कभी कभी माताओं को ये भी होता है कि माताएं कहेंगे कुमार अकेले है, चलो इनको बुला के कभी खिलाए, खिलाना चाहिए ना खाना, माताओं को लगता है कुमार बनाते नहीं कुछ, हाँ बाबा के बच्चे बहुत सेवा करते हैं सेंटर में भी सब जगह पर, इनको बुला के खिलाना चाहिए, ये खिलाना चाहिए, तो खिलाना चाहिए ना, नहीं तो कौन खिलाएगा, बताओ माताएं, खिलाना चाहिए, माता जी कहता है हम कुमार है सेंटर में, घर में खाते भी नहीं, बना भी नहीं सकते हैं, तो उनको तो खिलाना चाहिए ना, माता जी बना के खिला सकती कभी कभी, चलेगा, और माता जी बताओ, हाँ नहीं आपके लगता है कुमार है, दो तीन कुमार बहुत अच्छे सेंटर में सेवा करते हैं, मेला में करते हैं, हम बुला के खिलाते हैं, बाबा के बच्चे हैं तो माताओं बना के खिला सकते हैं ना, कुछ खिलाना चाहिए ना, हाँ देखो माता जी कहते खिलाना चाहिए, और माता जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, घड़ी आगे जा रही है, हाँ ये मोह में, ये भी एक मोह है, ये भी मोह, आप माता जी नहीं उनके लिए, शुभ बाबा माता जी है, माँ बाप उनके है, आप अपने भर किसी को भी इधर उधर बुलाना, ये भी एक मोह का रग है, किसी कुमारों को अपने पास बुला के फंसाना नहीं, किसी को उनको खिलाने वाला, बाबा के बच्चे हो, उनके माँ बाप है, उनको खिलाने वाले, गीता पाठशाला में घर में बुला के ये कभी काम नहीं करना, ये बहुत करते हैं, तब मैंने याद आया कि माताओं को लगता है कि ये कैसे खाएंगे, हमारे घर में बहुत अच्छी चीज बनाया, गुजराती में क्या कहते हो, घी का ये बनाते हैं ना, हाँ वो बनाया तो बुला, इनको बुला के खिलाना चाहिए, ये तो बनाते नहीं है, नहीं उनको बाबा खिलाएगा, बाबा माना सेंटर बना के खिलाएगा, सेंटर बना के खिलाता भी, भोग में हर गुरुवार को बाबा बना के खिलाता है, अगर आपकी इच्छा हो तो बहन जी को बताओ और गुरुवार में भोग के द्वारा खिलाओ, सबको खिलाओ, लेकिन किसी को अपने फंसाना नहीं अपने में, ये भी किसी उनके भी स्मृति आती है ना, अरे माता जी बहुत अच्छी है, माता जी ये खिलाती है, अब उनकी बुद्धि में कौन आया, ये भी हिसाब किताब बनाते हैं हम। लेकिन उनके माँ बाप तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये भी ध्यान जरूर देना चाहिए। समझ में आया, किसी को खिलाना पिलाना ये काम नहीं। इसलिए मैं पहले पूछा आपके अंदर ये संस्कार है, ये संस्कार को भी दबाओ नहीं, तो इसको सेंटर में गुरुवार के दिन बना के बाबा को बता, टीचर को बता के गुरुवार में बना के खिलाओ, ठीक है, बाबा भी और बच्चे भी। तो बाप को बच्चा बनाएंगे ना, तो उस बच्चे को भी खिलाएंगे ना, हाँ उसको भी खिलाओ और इनको भी खिलाओ, बाबा के बच्चे को भी खिलाओ। लेकिन ऐसे किसी किसी को बुला के खाने पर आओ, हमारे पास आओ, ऐसे बुलाने जाना नहीं। समझ में आया कि जाना चाहिए, कभी कभी तो करना चाहिए ना, माता जी बताओ पीछे वाली, कभी कभी बुलाना चाहिए, फिर टीचर को पूछ लो, टीना बहन बताएंगे, बताओ टीना बहन बताने जाना, कभी कभी खिलाना चाहिए, आपकी छुट्टी है आज, दीदी कहाँ गई, हाँ खिला सकते कभी, चलेगा आपकी छुट्टी, लेकिन आप बना के खिलाएंगी, हाँ देखो टीचर खिलाने तैयार है। तो आप इस मोह के जाल में कभी नहीं, बहुत जगह सुनाई देता है, समझ में आता है, माताओं की इच्छा होती है, शुभ इच्छा है, लेकिन ये आपकी शुभ इच्छा भी किसी का पाप बनाती है, पाप बन जाता है, हिसाब किताब बन जाता है। हमने शुभ इच्छा से रस्ते पर जा रहा था, कोई गरीब, आपने गरीब को दान किया, 5 रुपए दे दिया, गरीब है बेचारा, तो चलेगा, उसने तंबाकू खाया, शराब पिया, आपके ऊपर आ गया। दान भी करना, पात्र को देख के दान करना, कहा आपकी भावना बहुत अच्छी है, गलत नहीं है, क्योंकि माताओं के संस्कार है खिलाने का, खिलाओ जरूर, लेकिन विधि पूर्वक खिलाओ, ठीक है मंजूर। अभी आप भी कुछ सुनाओ, आप कहते सब हमको सुनाते हैं, हमारा कोई सुनाते नहीं। देखो बहन जी आए, 2-3 मिनट है, जल्दी जल्दी बताओ, आपके मन में इतना सब सुनने के बाद फिर भी कोई भी एक दुविधा अगर है तो बताओ, कोई भी किसी पर का हाथ उठा के खड़े होके बताओ, भाई जी इस परिस्थिति में इसमें क्या करना चाहिए, बहुत सुनाया, सुना आपने, इतने दिनों में से बहुत खाना खाया, फिर भी एक खाना कभी खाया नहीं, कहेंगे सब कुछ खिलाया, मधुबन में आइसक्रीम खिलाया नहीं, ऐसे बोलेंगे आप ना, मधुबन में सब खिलाया, एक चीज कभी इच्छा रहती है, ऐसे आपके मन में एक कोई प्रश्न जो समझ में नहीं आया, ऐसे कोई तो एक उठा ओके बताओ, माताओं के तरफ एक, भाइयों के तरफ एक, जल्दी जल्दी, नहीं तो बहन जी आ गई, अगर क्लास कम नहीं किया फिर दंडा दिखाएंगी, कहे ना कृष्ण को भी दंडा दिखाए ना, हाँ इसलिए जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताता, हाँ फिर से बताओ, गुड चले, अच्छा क्या, अभी जा करके योग तपस्या कहा, क्या कंफ्यूजन इसलिए होता है, याद, योग और तपस्या, तीन चीज है। तो याद कहा, चलते फिरते किसी को देखते योगदान देना, याद एक न, बाबा ने आज ये मुरली के पॉइंट सुनाया, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दो, ये याद है, ये जो बाबा कहते हैं 8 घंटे चलते फिरते, क्यों हम गृहस्थ में रहते हैं, साधारण है, तो ये करो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ तपस्या भी बैठ के करना चाहिए, अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो बाबा कहता है, तो वो तपस्या करना सवेरे और शाम, जब बैठते हो शांति स्तंभ पर दो, कहीं भी बैठो, आंखें बंद नहीं करना, आराम से खोल के बैठना, और पहले स्वाध्याय, अपने आप से बात करो, क्योंकि मन और बुद्धि को एक करना पड़ता है, नहीं तो आप मन चलता है, बुद्धि के अंदर और कोई बातें याद आती है, तो योग लगता नहीं, इधर उधर के बातें याद आती है, गृहस्थी संसार वाले सब याद आता है, तो क्या करें, माताजी के बच्चे याद तो आएंगे, संसार है तो याद नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं, याद नहीं आना चाहिए तो क्या करो, वो विधि है, योग में बैठते ही अपने आप से प्रश्न करते जाओ, मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरे गुण, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरे 7 गुण है, धीरे धीरे प्रश्न करते जाओ, अगर ये भाई बोलता ही नहीं है, इससे मुझे बुलवाना है तो मैं पूछता रहूंगा ना, तो बोलता रहेगा, नहीं तो ये बोलता ही नहीं है, तो बुद्धि को डल कर दिया हमने, बुद्धि को जागृत करो, बुद्धिवान बनो, बुद्धि मेरे से लगाओ, तो ये बुद्धि स्वच्छ कैसे होंगे, तो उससे बात करो, तो बात करने का प्रश्न करते चलो, किसको कर रहे हो, बुद्धि से पूछ रहे हो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, जवाब है आपके पास, फिर मैं कहां से आया, ऊपर से, ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है, ब्रह्मा बाबा क्या करता है, प्रश्न करते जाओ, जो ज्ञान है यूज करो, फिर उस सूक्ष्मतन के ऊपर क्या है, परमधाम है, परमधाम में कौन है, शिव बाबा कौन है, वो उसकी 8 शक्तियां है, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, और पानी का सागर है, चलेगा? नहीं, नहीं, पानी ऊपर से आता है ना कभी, तो मुझे लगा पानी भी ऊपर होगा ना, नहीं होगा, पानी नीचे से तो नहीं ऊपर से आता है। हाँ, पानी का सागर तो नहीं है ना, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। फिर शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, शिव बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, शिव बाबा भाग्य विधाता है, और लास्ट वाला शिव बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। भगवान मेरे पति की बुद्धि को ताला खोलो, बताते हैं ना। हाँ, माताजी जाके मंदिर में कहते बाबा इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, शिव बाबा बुद्धि, बाबा ने कहा मैं आकर के बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाता हूँ, दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ, हे भाग्य विधाता का, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, करेंगे ऐसे। इसको कहते ये दोनों चक्के चलना चाहिए, अगर ये फैन है चलता ही नहीं है, हवा आएगा, फैन तो है चल नहीं रहा है, तो फैन चलता है तो देखो वाइब्रेशंस बनते हैं, हवा ठंडा हवा लगता है ना, तो तन और मन ठंडा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, अपने आप नहीं होगा, ये दोनों फैन चलना चाहिए। दो चक्कर है, सदाचरण चक्कर दोनों घुमाना चाहिए, एक घूमता है एक नहीं घूमता है, तब तन और मन दोनों शीतल हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी, तीनों बनने का, तीनों ही प्राप्त करने का, यही एक संगम युग का ना, 5000 साल का बोने का टाइम, यही संगम। और भी बहुत छोटी छोटी मैं सुन रही थी पीछे, इतनी सुंदर बातें ध्यान पर दिलाई है भाई जी ने, किस प्रकार आपस में व्यवहार करना है, ब्राह्मण परिवार से भी कैसे मर्यादा से चलना है, कैसे अपने मोह में किसी को भी नहीं फंसाना है, सब रियलिटी आज हम सभी के सामने भाई जी ने रखी है। हम सभी इन बातों को समझ करके स्वीकार करेंगे, सिर्फ समझ तक नहीं रखेंगे लेकिन स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा जी ने कहा 2-3 मिनट ही याद करो, तो बहन जी अभी 1 घंटे तो बाबा की याद कर रहे थे, बाबा ने ये सुनाया, बाबा ने सुनाया, अभी 2 मिनट क्यों? हाँ, याद मना क्या करेंगे आप, अभी बैठ के अभी बाबा को कहेंगे बाबा आपने मुझे हमको ये सुनाया, ये सुनाया, सब हम वादा पूरा करेंगे। ये मेरे पॉइंट को सुनाया मैंने, मनमत कोई था इसके अंदर, सब मुरली के पॉइंट ही सुनाया, कोई भी मैंने अपने तरफ से नहीं सुनाया, तो बाबा के पॉइंट से, तो बाबा को थैंक्स देना चाहिए कि बाबा आपने अच्छी पॉइंट सुनाया, आज इन चारों पॉइंट्स को हम जीवन में आचरण में लाएंगे, ये बाबा को थैंक्स देना है। किसी से कुछ मिलने के बाद थैंक्स देते ना, तो बाबा के पॉइंट थैंक्स देंगे ना, इसको कहते हैं बाबा की याद। ठीक है,
मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार चांद।